प्रणय निवेदन और उससे उपजा दर्द, यही मीरा की कविता का प्रधान विषय है। हम कह चुके हैं कि यह प्रेम सामान्य नहीं, कुछ अर्थों में असामान्य है और असामान्य के प्रति है। मनोविश्लेषक इसकी अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, परंतु यह इतनी आसानी से व्याख्या और निपटा दिए जाने वाला नहीं है। मीरा के प्रेम को अलौकिक और दिव्य भी कहा गया है। अलौकिक वह इस अर्थ में हो सकता है कि उसकी तरह की दीवानगी सामान्यतः हमें लोक में कम ही दिखाई पड़ती है। निराकार के प्रति तो वह नहीं ही है, भले ही उसका आलम्बन कृष्ण हो। आचार्य नंदूराय वाजपेयी का भी यही मत है। महादेवी वर्मा की कविता के विवेचन के क्रम में उन्होंने कहा है, जिन्होंने सूरदास जी के गोपी विलास और भ्रमर गीत का अध्ययन किया है, उन्हें मीरा को उस किसी निराकार कृष्ण की उपासिका बना देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अवश्य मीरा एक नारी थी और गिरधर के प्रति उनका प्रियतम भाव था, किंतु ऐसा ही भाव गोपियों का भी था जो निराकार की उपासिका नहीं थी। मीरा ने अपने प्रेम को जिस रूप में अपनी अनुभूत का विषय बनाकर प्रस्तुत किया है, उसे जिस प्रियतम भाव से रंगा है, उसके चलते वह बहुतों के लिए एक पहेली जरूर बन गया है। परंतु गहराई में जाकर विचार करने पर ऐसा लगता है कि उस प्रेम का मूलवर्ती सूत्र कहीं न कहीं लोक से ही संबंधित है। अभिव्यक्ति में वह इतना उदात, इतना अशरीरी, इतना निष्कलुष और इतना निश्चल है कि एकदम सांसारिक और लौकिक संदर्भों में वह किसी को भी अपनी व्याख्या से बरज देता है। इस प्रेम में दर्द की जो तीव्रता है, उससे उसकी प्रगाढ़ता का अनुमान किया जा सकता है। इस प्रेम से जुड़ी एक पहेली और भी है कि आखिर मीरा के पदों में बार बार जिस जोगी का जिक्र आता है, वह जोगी कौन है या कौन हो सकता है। इस जोगी वाली पहेली के सच जाने पर मीरा के प्रेम की पहेली का भी कुछ समाधान हो सकता है। डॉक्टर पद्मावती के मत को उद्धृत करते हुए डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का इस विषय पर कहना है कि मीरा द्वारा स्मृत, चित्रित और संबोधित जोगी परम प्रीतम कृष्ण है, यही मान्य लगता है। जोगी उनकी साधना पर नाशपंथी प्रभाव प्रकट करता है, लेकिन इस जोगी को लेकर मीरा ने जो कुछ कहा है, वह कुछ और भी संकेत करता है। जिसके विरह में मीरा दुखी है और जिसे लेकर मीरा ने ऐसी अचूक अभिव्यक्त की है, उसका लौकिक आधार नहीं होगा, यह मानना संभव नहीं लगता। जिसके विषय में मीरा ने यह सीधी पंक्ति लिखी है, या देख्या बिन कल न पड़ता जाने मारी छाती, वह मीरा के अज्ञात प्रियतम का ज्ञात आधार न होगा। मीरा ने जोगी के वियोग में जो कुछ कहा है, वह विरह वर्णन की परंपरा में होते हुए भी किंचित असामान्य है। जोगी की राह देखते बहुत दिन बीत गए, वह आज तक नहीं आया। या तो जोगी जग में नहीं है, मर गया है, या उसने मुझे भुला दिया। अगर यह जोगी कृष्ण है तो यह आशंका कि वे जीवित हूँ न हूँ असंगत है। अंततः त्रिपाठी जी का कहना है कि इन पदों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मीरा ने अपने गेय पदों में अज्ञात प्रियतम कृष्ण का जो रूप उभारा है, उसमें कहीं न कहीं उनके मृत पति का रूप भी घुल मिल गया है। मृत पति की स्मृति का कृष्ण के रूप में शामिल न होना अस्वाभाविक है। पंडित विद्वान विद्यानिवास मिश्र, जिन्होंने त्रिपाठी जी की किताब की भूमिका लिखी है, का कहना है कि मीरा के जोगी पदों में किसी आकार के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसी उपस्थित के लिए बेचैनी है जो सांस रहकर चली गई है, आश्वासन देकर कि फिर सांस हो लूंगी, और तब ऐसी प्रतीत होती है कि वह उपस्थित इस लोक के अनुभव के परे है। कभी कभी लोग मीरा के इन पदों में किसी लौकिक संदर्भ की छाया देखते हैं या नाश पंथ की छाप देखते हैं। हो सकता है कि लौकिक पति और अलौकिक पति श्री कृष्ण अनुभव में एक हो गए हों, पर मीरा के पदों की शब्द योजना में भौतिक संसार और उसका सौंदर्य तो छलकता मिलता है। कहीं भी इस संसार और उसके सौंदर्य के प्रति विषया शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती। एक सर्वथा विपरीत मत डॉक्टर भगवान दास तिवारी का है, जिन्होंने मीरा पर बहुत काम किया है। उनके अनुसार मीरा के जोगी संबंधी पद भ्रष्ट हैं। उन्हें किसी या किन्हीं जोगी नामधारियों ने भ्रष्ट किया है। पद्मावती श्रवणम की मान्यता पर तिवारी जी की टिप्पणी है कि जोगी संबंधी उक्त भ्रष्ट पदों के आधार पर श्रीमती पद्मावती श्रवणम ने मीरा के जोगी विषय विशेष के प्रति गहरे व्यक्तिगत दाम्पत्य संबंध को व्यक्त करने वाले अंतर स्रोत की जो कल्पना की है, वह अनुचित और भ्रांत ही नहीं, मीरा की पुनीत नैतिकता पर आरोपित झूठा कलंक भी है। सवाल मीरा की नैतिकता या उनकी छवि को भ्रष्ट करने या उसे कलंकित करने का नहीं, मीरा को समझने और बुद्धिग्राह्य तर्कों तथा और तथ्यों के साथ उन्हें प्रामाणिक रूप से व्याख्यायित करने का है। संभव है कि जोगी नामधारी यह व्यक्ति और कोई न हो, स्वयं श्री कृष्ण हो, जैसा कि त्रिपाठी जी का भी मानना है। तब मीरा की छवि के विरूप होने का सवाल ही कहां उठता है। जरूरी नहीं कि जोगी का संबंध नाथ पंथ से जोड़ा जाए, उसका सामान्य अर्थ भी हो सकता है, जैसा कि कुछ लोगों ने किया भी है। अब इस जोगी का या कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की जो उत्कटता है, उसके विक्षोभ का जो गहरा दर्द मीरा में है, उसके दोबारा आने की जो प्रतीक्षा है, या उसके धोखा देकर चले जाने की जो के प्रति जो शिकायत है, या इन सारी बातों को जितने गहरे एहसास के साथ मीरा ने कहा है, उसके प्रति उनकी जो अनन्यता और एक निष्ठता है, उसी में समा जाने की जो उत्कट लालसा है, उसकी स्थिति में जिस मिठास तथा उनके काल्पनिक संयोग में जिस कंपन तथा सिहरन की अनुभूति उनमें है, उसके रूप के प्रति जो गहरा आकर्षण तथा जन्म जन्मांतर तक जुड़ी रहने की जो आकांक्षा उनमें है, यदि उसमें यह माना जाए कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनके मृत पति के स्मृति भी इसमें घुली मिली है, जो इस सारे मीरा भाव को एक स्थायित्व तो देती है, उसे एकदम अरूप होने से बचा लेती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। यह तो मीरा की नैतिकता को ही उभारना है। लौकिक तथा अलौकिक पतियों का एकात्म ही मीरा के प्रण निवेदन तथा उससे उपजे दर्द की बुद्धि संगत व्याख्या का आधार बन सकता है। इस निबंध में शुरू से ही हमारा लक्ष्य मीरा के काव्य की या उनकी भक्ति की शास्त्रीय व्याख्या न होकर उसके ऐसे पक्षों को उजागर करना रहा है, जहां अपनी कविता के साथ मीरा मध्यकालीन भक्त कवियों के बीच अपनी खास पहचान को लेकर हमसे मुखातिब होती हैं। इस पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू नारी होते हुए भी और राजकुल की वधू होते हुए भी मध्यकाल के सामंती समाज में नारी जात पर लागू विधि निषेधों के बावजूद मय शैली में अपनी वैयक्तिक प्रणय भावना को, अपने प्रेम को उनका मुखर होकर व्यक्त करना है। यह सही है कि उनके इस प्रेम का आलम्बन श्री कृष्ण है, परंतु इससे हमारे उक्त कथन का महत्व कम नहीं होता। कारण हम बता चुके हैं और मीरा के जीवन से संबंधित तथ्य इसके गवाह हैं कि मीरा की इस कृष्ण भक्ति को राज परिवार के भीतर से ही नहीं, लोक तथा समाज के बीच भी विरोध का, लांछनाओं और प्रताड़नाओं का लक्ष्य बनना पड़ा, और अंततः मात्र इसके नाते ही मीरा को राज परिवार छोड़कर बाहर आना पड़ा। मीरा के आचरण को भले ही उसका संबंध कृष्ण भक्ति से हो, घर परिवार तथा समाज में स्वीकृत नहीं मिली, उन्हें दर दर भटकना पड़ा। नारी की प्रणय भावना, उसके मन प्राणों में निहित प्रेम की पिपासा को सूर ने भी गोपियों के माध्यम से व्यक्ति दी है। उनकी गोपियां भी सामाजिक लोक मर्यादा के दायरे को लांघकर कृष्ण के साथ रात रात भर रास रचाती हैं, परंतु सूर के यहाँ यह सब आह्लादक होते हुए भी मीरा जैसा नहीं है। मीरा समूचे भक्तिकाल में अकेली नारी भक्त है, जिन्होंने अपनी आत्मनिवेदन पूर्ण कविता में अपनी भक्ति और अपने प्रेम के माध्यम से एक पूरी की पूरी समाज व्यवस्था की असहिष्णु और अमानवीय मानसिकता को, उसकी भेदभावपूर्ण रीत नीति को, उसके दो मुहे चेहरे को बेनकाब किया है। मीरा की कविता का दायरा सीमित है, यह हम कह चुके हैं, परंतु अपने सीमित दायरे में भी अनुभूत की गहराई और उसकी प्रभाव सघनता में वह समूचे भक्ति काव्य में अद्वितीय है। अन्य भक्त कवियों में हमें संप्रदायगत निष्ठा के, अनूठी कथन भंगिमाओं के पांडित्य के, परंपरागत काव्य रूढ़ियों के, शिल्प चातुरी के उदाहरण भी मिल जाएंगे। जिस समाज व्यवस्था की शिकार मीरा बनी, उस व्यवस्था के पक्ष के तर्क भी उनमें हम पा सकते हैं, परंतु जहां तक मीरा की कविता का सवाल है, वह विशुद्ध रूप से अनुभूत की बुनियाद पर रची गई कविता है। वह प्रेम की, समर्पण की, आत्मदान की कविता है। घनता के जिस बिंदु पर पहुंचकर दर्द भी दवा बन जाया करता है, वह उस दर्द की कविता है, समूचे भक्ति काव्य में जिसकी मिसाल नहीं है।